ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस अवसर पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर भारत को पावर हाउस बनाने पर है और भारतीय कंपनियां तेजी से विकसित हो रही हैं। श्री सांचेज ने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दी जा रही है। इस फैक्ट्री में बनने विमान दूसरे देशों में भेजे जाएंगे और C-295 की फैक्ट्री नए भारत को दर्शाती है। ठोस कदम के बिना हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने कहा कि स्किल्स और रोजगार सृजन पर हमारा जोर है। श्री मोदी ने कहा कि एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से नए उद्योगों को बल मिलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने हवाई अड्डे से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक रोड शो किया। दोनों नेताओं का स्वागत करने के लिए रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के स्वागत के लिए रास्ते में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। वडोदरा में C-295 सैन्य विमानों के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद नेताओं का प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अमरेली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भुज नलिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि इस परियोजना से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में परिवहन का खर्च घटेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस विशाल परियोजना के अंतर्गत 24 बड़े पुल, 254 छोटे पुल, 3 सड़क ओवरब्रिज और 30 अंडरब्रिज का निर्माण शामिल है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। अगले महीने की 13 तारीख को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले पहले चरण के चुनावों के लिए 805 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। मतों की गिनती 23 नवम्बर को की जाएगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित 185 लाख मीट्रिक टन LMT धान की खरीद की जाएगी और धान का एक भी दाना नहीं छूटेगा। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने घोषणा की कि चावल मिल मालिकों की शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि हितधारकों के सामने आने वाली किसी भी कठिनाई का तुरंत समाधान किया जा सके। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आज सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें चुनाव से संबंधित विषयों और गठबंधन में ठोस रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये बैठक अहम मानी जा रही है। आज से देशभर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है। इस सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA आज नई दिल्ली में अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय है व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 13वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शोध संबंधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।